الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى.
Recording in progress.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ اس ہفتے کی صحابیات کلاس ہم شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاسز جو ہیں وہ مصروفیات کچھ اور وجوہات سے نہیں ہو سکیں. ہم نے آپ کو ذرا چھٹی وٹی بھی دے دی کہ بس کل کافی دیر تک آپ لوگوں کو لے کے بیٹھے تھے، نوجوانوں کو جو لوکل ہیں ان کو. تو آج جو ہے وہ تکرار کلاس وغیرہ بھی نہیں ہوئی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ دن گپ شپ کر کے فریش ہی ہوں گے ابھی تک. چل تو اب صحابیات کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے ہفتے الحمدللہ ثم الحمدللہ بالآخر ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. تمہید وغیرہ ہماری مکمل ہوئی. اس کے بعد یہ شخصیت کے اوپر آ گئے تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے کوئی تھوڑا سا ریکیپ اگر آپ میں سے کر سکے، کوئی بات کسی کو یاد ہو، نوٹ کری بھی ہو، کیا بتایا تھا حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ جی پڑھا. حضرت حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی آپ کی سیرت کے بارے
میں،
ان کا لقب طاہرہ تھا، کنیت ام ہند تھی. شاید ام ہند والی بات آپ نے پڑھی ہوگی، ہم نے کلاس میں شاید نہیں کری تھی، لیکن طاہرہ کی بات مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے ہی، یعنی اسلام تو بعد میں لے کر کے آئی نا، جب اسلام نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تب اسلام لے کر کے آئی. تو اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت جو تھی وہ اتنی پاکیزہ تھی، اتنی خدا ترس تھی. ایک تو بالکل بھی برے کاموں میں نہیں پڑتی تھی، اور نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھ بڑھ کر کے، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس طرح کے جو نیکی کے کام اس وقت تھے ان میں آگے بڑھی ہوتی تھی، اور شرک نہیں کرتی تھی. یہ بھی ان شخصیات میں سے تھیں کہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. جیسے پہلے ہم نے بات کی تو ان کے اپنے کزن ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے، وہ بھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. اور ہم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پڑھا تھا عشرہ مبشرہ کے اندر، تو ان کے والد جو زید تھے وہ بھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، کبھی بھی نہیں، کفر کے زمانے میں بھی نہیں کری. اور نبی علیہ السلام تو خود تھے ہی بالکل موحد. تو ان کے بارے میں یہ پڑھا تھا. دوسرا، وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اچھا ماشاء اللہ جھگڑا نہیں کرتی تھی. ماشاء اللہ جھگڑا نہیں کرتی تھی. ابھی تو ہم شادی تک آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھگڑے تو شادی کے بعد عموماً شروع ہوتے ہیں، تو ابھی تو پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو ہم نے پھر اور باتیں یہ کری تھیں کہ جی ریحان، تو صحیح تھا، ٹھیک ہے. تو ہم نے ہاں ان کی فیملی لینیج کے بارے میں بات کری، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بھی اوپر جا کر کے جو فیملی ٹری تھی، جس کو شجرا بھی کہتے ہیں، شجر مینس ٹری، تو شجرا کہتے ہیں انگریزی میں، فیملی ٹری کہتے ہیں، تو وہ اوپر جا کر کے قصی بن کلاب سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کے بارے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ جو تھے نا نبی علیہ السلام کے بھی اوپر ففتھ دادا تھے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام ان کے ففتھ گرینڈ سن تھے، ففتھ جنریشن. ठीक है, यानी बेटे का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, तो फिफ्थ ग्रैंड सन थे नबी अलैहिस्सलाम। और ये जो थी वो फोर्थ ग्रैंड डॉटर थी, ये फोर्थ जनरेशन में थी हजरतुल कुबरा नबी अलैहिस्सलाम फिफ्थ जनरेशन में थे, ठीक है। और उम्र में भी जाहिर है 15 15 साल का फर्क था, तो जाहिर है वो ज्यादा सीनियर थी आप नबी अलैहिस्सलाम जो थे, वो एक एक्स्ट्रा जनरेशन ऐड हो गई आप के जमाने में। तो कुसई जो थे ना वो कुरैश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग थे। इन्होंने क्या एक बहुत बड़ा कारनामा किया था कि इनके जमाने में ना जो कुरैश थे वो मक्का मुकरमा के अंदर सारे नहीं रहते थे, ठीक है। यानी मक्का मुकरमा जो था वो एक बाकायदा प्रॉपर टाउन की शक्ल में नहीं था उस वक्त, बल्कि ये लोग जो थे वो कोई फैमिली जो है वो किसी पहाड़ पे रह रही है, कोई फैमिली जो है वो पहाड़ के पीछे कोई रेगिस्तान है वहां पे उसने अपना घर बनाया हुआ है, किसी ने जो है वो फलाने वो जो शेप होती थी शरीर खाई, ठीक है, जैसे कोई खाई है वहां पे उसने घर बनाया हुआ है, किसी ने कहीं पे घर बनाया हुआ है, तो इस तरह से ना ये डिस्पर्स रहते थे, ठीक है। इन्होंने आकर के जब ये बड़ी उम्र को पहुंचे तो इन्होंने ना कुरैश को इकट्ठा किया और उन सबको मक्का मुकरमा के अंदर बहैसियत टाउन के आबाद होने की तरगीब दी, और लोगों ने उनकी बात मान ली, तो लोग जो है वो बकायदा काबतुल्ला के गिर्द फिर एक टाउन की शक्ल में आबादी बसाई, इससे पहले ऐसी आबादी नहीं। जी
मैं
तो सही सौद या कुसई, इनके वालिद का नाम केलाब था, ठीक है। केलाब का मतलब क्या होता है? डॉग्स, यही होता है इसका मतलब, ये कल्ब की जमा है, ठीक है। कल्ब वाहिद, एक कुत्ते को कल्ब कहते हैं और कुत्तों को जो है वो केलाब कहते हैं, तो इसकी इनको केलाब क्यों कहते थे? फिफ्थ जनरेशन में थे ना, माशाल्लाह उन्होंने सही जवाब दिया था ऑनलाइन भी, फिफ्थ और फोर्थ जनरेशन का। तो अजीब अजीब नाम रखते थे ये लोग, तो इनका नाम कुत्ता क्यों पड़ गया था भाई? उसकी एक रीजन किताबों में लिखी है कि ये कुत्ते पालते थे, बहुत सारे इनके पास कुत्ते होते थे, तो उसकी निस्बत से इनको जो है वो किलाब इनका एक नाम पड़ गया। असल में नाम इनका किलाब नहीं था, असल में नाम कुछ और था, एक टाइटल पड़ गया इनका। दूसरी रीजन ये थी कि कुरैश जो है ना वो ये किया करते थे कि अपने नाम जो है ना वो ऐसे रखते थे खूनखार किस्म के, ठीक है, जिसको सुन करके उनके दुश्मनों पर उनकी हैबत तारी हो जाए, ठीक है। जैसे आजकल भी वैसे फहद, चीता, ठीक है, असद, शेर, या कुत्ता, कुत्ते, या भेड़िए को क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के नाम रखते थे, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम अपने नाम जो है ना वो ऐसे क्यों रखते हो और अपने गुलामों के नाम इतने अच्छे अच्छे क्यों रखते हो, जैसे मुजाहिद, राइट, तो गुलामों के नाम अच्छे रखते हो, अपने नाम जो है वो इतने खौफनाक किस्म के रखते हो। तो उसने जवाब दिया कि भाई हम अपने नाम जो है ना अपने दुश्मनों के लिए रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दुश्मन हमसे डरे, और अपने गुलामों के अच्छे नाम हम अपने लिए रखते हैं क्योंकि हमारे गुलाम हमारी खिदमत करेंगे, हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे, ठीक है। तो इतना उनको ख्याल होता था कि देखो नामों का कितना असर पड़ता है इंसान के ऊपर, ठीक है, तो वो इस तरह से चुन चुन करके ना नाम रखा करते थे। तो बहरहाल, तो किलाब तो कुसई के वालिद का नाम था। जी,
असल नाम क्या था?
इनका असल नाम क्या था? असल नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा ही था, अगर मिल जाता तो बता देंगे, ऐसे ही कुछ था, मिलेगा तो बता देंगे आपको। अच्छा, तो बहरहाल, तो कुसई जो थे इनके फिफ्थ जनरेशन में नबी अलैहिस्सलाम थे और फोर्थ में हजरत कुबरा। जी
शायद ये भी है कि अगर अली रबी की छात्र थे कि अगर हसन और अगर हुसैन रबी का नाम हर ब्रदर हर यानी
हाँ, अली रतन भी तो कुरैशी थे ना, तो उनके ऊपर भी असर तो आया था जाहिर है, तो वो भी ये नहीं कि खाली उनको लड़ना पसंद था तो इस वजह से वो अपने बेटों के नाम लड़ाई पे रख रहे थे, बल्कि यानी दुश्मन की फिक्र हर वक्त रहती थी इन लोगों को, ठीक है, तो इस वजह से दुश्मन का ख्याल रखते हुए नाम रखते हुए। अच्छा, तो ये चंद बातें तो हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी, और भी बहुत कुछ है इनके मतलब के बारे में, इनकी अम्मी का नाम जो है वो फातिमा था, तो अम्मी की अब्बू का नाम जायदा था और अम्मी की अम्मी का नाम जो है ना वो हाला था, ठीक है, नानी हो गई वो जो है वो नाना हो गए वगैरह हो गए।
किताब जो था उसका असल नाम हकीम।
उनका असल नाम हकीम था, सही, ठीक है, जवाब दूंगा। अच्छा, अब जो है ना हम आते हैं इसके ऊपर के नबी अलैहिस्सलाम जब तकरीबन 12 साल के हुए, तो उस वक्त आप लोगों को अगर याद हो हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर्स के अंदर ये बातें पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तिजारत के सफर पे शाम ले गए थे, ठीक है। तो शाम में एक बहुत मशहूर शहर है बुसरा, बसरा ये इराक का शहर है, ठीक है, आज भी बसरा के नाम से। शाम में जो है ना वो है बुसरा, तो बुसरा ये पहुंचे तो वहां पे जाकर के जो है ना वो ये वाकया पेश आया था कि एक राहिब था, ईसाई राहिब वटीरा, उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा था तो पहचान गया था, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर एग्जैक्ट निशानियां नबी अलैहिस्सलाम की मौजूद है ना, आज भी मौजूद है उनके पास, और उस वक्त तो जाहिर मौजूद थी, वो पहचानते थे आपसे, वो तो पहचान गया कि भाई ये तो ना अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। तो उसने फिर अबू तालिब को मशवरा दिया, कहा कि तुम उनको आगे मत लेकर के जाओ, शाम के अंदर यहूदी बसते हैं और वो जो है ना वो अच्छी तरीके से पहचानते हैं सारी चीजों को, तो वो तो ना इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहेंगे कि ये मर जाए किसी तरीके से ताकि ये ना बने अल्लाह का आखिरी नबी है। बहरहाल कोशिशें करते हैं, शैतान की कोशिशें अपनी तरफ जारी रहती हैं, तो तुम ना लेकर के जाओ ना इनको। तो अबू तालिब ने उनकी बात मान ली थी बहिरा की, और उन हजरत नबी अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया था, ठीक है। तो ये पहला सफर था नबी अलैहिस्सलाम का तिजारती, जो कि नबी अलैहिस्सलाम खुद तिजारत नहीं करना था आपसे, जो इतने छोटे थे उम्र में, तो तिजारत का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना था अपने चाचा के साथ। तो उसके बाद जो है ना फिर नबी अलैहिस्सलाम और बड़े हुए और आपकी उम्र जो हुई वो तकरीबन 25 साल के करीब जब हो गई, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो ख्वाजा अबू तालिब आपसे जो चचा थे, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि भतीजे तुम देख ही रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, और उनकी औलादें भी अच्छी खासी थी, बहुत सारे उनके बच्चे भी थे, तो अच्छा खासा बड़ी फैमिली थी उनकी, अली रज़ा उनके बेटे थे, उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बेटी थी, और भी उनके हारिस और जाफर ये सब वो मुतालिब रज़ा उनके बेटे, मुतालिब के बेटे थे ना, ठीक है। तो अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी, अच्छा कमाई वमाई तो इनकी होती थी, तो फिर इतने गरीब क्यों होते थे? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये जो है ना फिर खर्च कर देते थे, ठीक है, क्योंकि ये कुरैश के बड़े थे और काबतुल्ला की जो रखवाली का काम था वो इन्हीं को मिला था अपने अब्बू अब्दुल मुतलिब से, ठीक है। तो जो हाजी आते थे या उमरा करने के लिए, जो तवाफ वगैरह करने के लिए बाहर से लोग आते रहते थे, भाई अल्लाह का घर है तो आते रहेंगे ना, तो अब ये जो है ना वो उनकी मेहमान नवाजी में इतना खर्च करते थे कि इनके पास कोई बाकी बचता ही नहीं, तो ये गुर्बत की इनकी वजह थी। तो नबी अलैहिस्सलाम कहा कि बेटा तुम देख रहे हो कि मेरे पास, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना वो जाओ इनके पास खदीजा बिन खुवैलद के पास, ये जो है ना बहुत अमीर खातून है, ठीक है, और ये बहुत नेक भी हैं और खुश अखलाक भी हैं और अच्छे लोगों की ये कदर भी करती हैं, ठीक है, थीके? तुम इनके पास जाओ और इनसे जो है ना वो कहो कि भाई तुम इनके पास काम करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, खदीजतुल कुबरा दातान इतनी अमीर कैसे थी, कैसे बनी है इतनी अमीर? उसकी सिंपल रीजन ये थी कि इनके जो वालिद खुवैलद थे वो बहुत ही यानी बड़े बिजनेसमैन भी थे और बड़े इज्जत वाले भी थे कुरैश के अंदर, और बड़े जो है ना वो जंगजू बहादुर किस्म के इंसान भी थे, ठीक है। तो वैलत की इन सब रीजंस की वजह से ये यार बिग फॉर्च्यून, अच्छा खासा उन्होंने पैसे कमाए थे, ठीक है। तो उनसे जो है ना वो इनको बहुत सारे माल विरासत में मिला था, क्योंकि खुवैलद जो थे उनका इंतकाल हो गया था हरबुल फुजार में, ठीक है। हरबुल फुजार किसी को याद है ये क्या चीज थी? हरबुल फुजार, जी साहब, हाँ हाँ, एक कबीला था तैस, उसकी जो है ना वो कुरैश के साथ जंग शुरू हो गई और ये बड़ी खूंखार किस्म की जंग थी, बड़ी जारी रही। बिलाखिर जो है ना ये हरबुल शुजात खत्म हुई, लेकिन उसके अंदर जो है ना ये खुवैलद ने लड़ाई लड़ी थी ऑन बिहाफ ऑफ कुरैश, या कुरैशी थे ना तो कुरैश की तरफ से खुवैलद भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हुए थे। तो खुवैलद जो है वो इस लड़ाई के अंदर काम आ गए, यानी काम आ गया मतलब दलाल फरमा गए। तो खुवैलद का इंतकाल हो गया हरबुल फुजार के अंदर। खुवैलद ने जो है वो अपने इंतकाल से पहले ही इनकी शादी करनी चाहिए, तो पहले तो उनका ये चाहत थी कि इनके जो कजन है यानी खुवैलद के भाई के बेटे वरका, ठीक है, तो वरका बिन नौफल मशहूर शख्सियत, तो वरका से इनकी शादी हो जाए। लेकिन फॉर सम रीजन, जो किताबों में रीजन नहीं लिखा हुआ एग्जैक्टली, लेकिन बस इतना लिखा है किसी वजह से जो है ना ये शादी नहीं हो सकी, वरका के साथ इनकी शादी नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट जो थे वो इन लाइन एक और शख्स थे, अतीक उनका नाम था, या कुछ किताबों में लिखा है अबू हाला उनका नाम, ठीक है। तो अतीक, लेट्स अज्यूम के फर्स्ट शॉट जो बने वो अतीक बने, तो अतीक से जो है ना फिर इनकी शादी हो, और अतीक से जो है वो इनका एक बेटा भी पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, ठीक है, अल्लाह की मर्जी। अतीक का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला की पैदाइश के बाद अतीक का भी इंतकाल हो गया। तो अब उनकी सेकंड शादी जो है ना वो फिर अबू हाला से की गई, ठीक है, अबू हाला से भी इनकी औलादें पैदा हुई, जो अभी इन्होंने नाम बताया था, क्या बताया था, एक तो हारिस बेटा था, एक बेटी जैनब भी पैदा हुई, ठीक है, और एक जो है वो जो अभी इन्होंने, भाई आपने क्या नाम, मोहम्मद बिन नवान, आपने जो इनका लकब जो था वो ताहिरा था,
नहीं
उम्मे हिंद, ठीक है, तो हिंद भी जो है वो बेटा था एक्चुअली, ठीक है, तो वो हिंद नाम का बेटा और हारिस नाम का बेटा और जैनब नाम की बेटी, ये फिर जो है वो दूसरे शोहर से पैदा हुए, ठीक है, अल्लाह की मर्जी कुछ अरसे के बाद दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, ठीक है। तो अब इनको जो है ना वो गोया के विरासत में, इनहेरिटेंस में, अपने बाप की इतनी सारी माल दौलत भी मिली, ठीक है, और अपने शोहरों का माल दौलत जो है वो भी इनको मिल गया, ठीक है। उस जमाने में कोई विरासत के वो उसूल को थोड़ी थे जो शरीयत ने बाद में अल्लाह इतना मिलेगा बीवी को, इतना नहीं मिलेगा, इतना दूसरों को मिलेगा, इतना मिलेगा, इनको बहुत माल दौलत मिल गया ना, ठीक है। तो अब ये माल दौलत के साथ करती क्या थी, ये अपने मालो दौलत को जो है ना वो लेकर किसी दुकान पे नहीं बैठ गई, ठीक है, कि चलो मैं एक अच्छी सी मॉल बना लेती हूँ, मक्का मॉल, नहीं, मक्का मॉल के अंदर जो है ना मैं दुकानें बनाऊंगी और लोगों को जो है वो चीजें बेचा करूँ, ये सब उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने माल को लेकर के सफर भी नहीं किया, कि चलो मैं अपना ऊंटों के ऊपर जो है वो खूब सारा माल लादती हूँ और अपने साथ जो है ना वो अपने सर्वेंट्स को लेकर के मैं शाम का सफर करती हूँ, ठीक है, वहां पे जाकर के मैं अपने माल को बेचूंगी और वहां पे प्रॉफिट कमाऊंगी और फिर मैं वापस लेकर के आऊंगी, ये भी उन्होंने नहीं किया, ठीक है। हालांकि उस जमाने में तो पर्दे का हुक्म तो दूर की बात, इस्लाम ही नहीं था उस जमाने में, ठीक है, लेकिन इनकी नेचर जो थी ना उसके अंदर ही ये अच्छी बातें मौजूद थी कि नहीं, मुझे तो घर संभालना है, मुझे तो अपनी औलादों की तरबियत करनी है, अपनी औलादों की परवरिश करनी है, ठीक है, औलादें तीन भी हो चुकी थी ना, तो ये चीज मुझे ये नहीं करना, मैं घर पे रहूंगी। तो ये अबू हाला क्यों था, हालांकि अबू हाला नहीं, सॉरी उम्मे हाला, अबू हाला नहीं था, मैंने गलत कह दिया था, उम्मे हाला उम थी ना कोई मार दो। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो क्या करती थी, वो फिर लोगों को हायर करती थी कॉन्ट्रैक्चुअली, ठीक है, कि भाई मैं आपको रुपया पैसा दूंगी, ठीक है, और आप उसको लेकर के ट्रैवल करें और डिफरेंट मार्केट्स में जाएं और वहां पे मेरे माल को जो है ना वो आप बेचें प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा ना उस प्रॉफिट को हम आपस में डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल है वो तो मेरा है, खदीजतुल कुबरा का है कैपिटल उनका है, तो वो कैपिटल लेकर के जो बंदा जाएगा मेहनत उसकी होगी, ठीक है ना, वो ट्रैवल करेगा ना, फिर वो जाकर के बाकायदा कस्टमर से बात करेगा और उनको कन्विंस करेगा और फिर जो है वो हिसाब किताब करेगा और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, तो उसको कहते हैं मेहनत उस बंदे की होगी, माल इनका होगा, ठीक है। तो इसको शरीयत में मिलता जुलता लफ्ज है इसके लिए एग्जैक्टली तो मेरा नहीं ख्याल के वो है, वो हमारे दूसरे साथी बता सकते हैं, मुदारिबत, ठीक है, मुदारिबत इसको कहते हैं, मीम वौत अलिफ रा बा, ठीक है, और हाँ मुदारिबत। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मुदारिबत में जो है ना वो सिर्फ आप नकदी दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जबकि खदीजतुल कुबरा जो है इन्होंने सिर्फ नकदी नहीं दी थी बल्कि इनका तो माल असबाब ऊंटों के ऊपर लदा हुआ ये सब कुछ होता था। तो या तो वो मुदारबत थी या वो मुदारबत की कोई शक्ल थी, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ही वही था कि भाई कैपिटल इनका होगा, मेहनत किसी और की होगी, और जो प्रॉफिट आखिर में बनेगा वो फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। सही है, तो इस तरह से ये बिजनेस करती थी, ठीक है, मर्दों से बात तो करती थी लेकिन उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं था बात करना, क्योंकि पता क्या काम आदमी आए थे, तो मीटिंग्स करती थी, बात करती थी, फिर उनको जो है ना वो तय करती थी कि अच्छा भाई इस तरीके से आप वगैरह, तो शी वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दिस, ठीक है, इनको बहुत प्रॉफिट होता था और बहुत अल्लाह ताला ने इनके माल में बरकत दी थी, तो इतनी ये अमीर हो गई थी कि कुरैश के दूसरे लोग जो थे ना वो इनसे कम हैसियत के होते थे और ये ज्यादा हैसियत, यानी ज्यादा इनके पास माल होता था, तो ये बड़ी मशहूर भी हुई, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरती भी दी थी, क्योंकि जमाने में चेहरे का पर्दा तो नहीं होता था, चेहरे का पर्दा तो आया 5वीं हिजरी के अंदर ना, तो चेहरा खुला होता था, तो जो अगर कोई औरत खूबसूरत है तो नजर आता था भी खूबसूरत, ठीक है, तो लोगों को पता था ये खूबसूरत भी है, ये अच्छे अखलाक वाले भी हैं, ये मालदार भी हैं, इनका खानदानी हसब नसब भी बहुत बेहतरीन है, पाकीजा भी है, सब कुछ है, तो बहुत लोग उनसे शादी करना चाहते थे कि भाई अब आपके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, अब जो है ना वो हमारी शादी हो जाए इनके साथ, इतनी अच्छी सिफात वाली खातून होगी तो कौन नहीं चाहेगा, ठीक है, लेकिन ये कहती थी नहीं अब मेरी औलाद हो गई है, अब मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, मुझे अब शादी नहीं करनी, ठीक है, तो बस इस तरीके से बिजनेस करती थी, इस तरीके से बिजनेस करती थी। तो जब ख्वाजा अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई आप खदीजा के पास जाएं और उनसे कहें कि भाई यू यू आर इंटरेस्टेड कि भाई आप जो है ना वो उनका माल तिजारत के लिए ले जाना चाहते हैं, कुछ किताबों में लिखा कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आप मेरा माल लेकर के जाए, और दूसरी जगहों पर लिखा कि अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खदीजा के पास जाएं और उनसे कहें कि मैं आपका माल ले जाने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना, तो विच एवर इज ट्रू इधर वे हुआ यही कि इनकी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अच्छा, ये नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुन चुकी थी, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी याद है किसी को,
अच्छा
नबी अलैहिस्सलाम की फूफी थी, ठीक है, ख्वाजा अबू तालिब की एक बेटी सफिया, और ये वो फूफी हैं जिनका कंफर्म है कि वो मुसलमान हो गए, ठीक है, एक दूसरी फूफी है आतिका, उनका भी अनकंफर्म है कि वो मुसलमान हो गई थी लेकिन कंफर्म 100% नहीं है, बाकी कोई फूफी कितनी फूफी आ गई, आठ नहीं छह थी, छह फूफी आ गई, यानी चार का तो कंफर्म है कि वो मुसलमान नहीं हो, ठीक है, एक का अनकंफर्म है और एक का कंफर्म है कि मुसलमान हो गई थी। तो सफिया रजान के घर पे एक दफा ना वो नबी अलैहिस्सलाम को देख चुकी थी कि भाई वो भी इतने अच्छे अखलाक वाले हैं वगैरह, तो जानती तो थी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इधर वे इन्होंने पैगाम भेजा या ख्वाजा अबू तालिब के कहने के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम उनके पास आए, तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अपना कैपिटल देती हूँ, बल्कि मैं आपको ज्यादा ही दूंगी, ठीक है, आप जो है वो मेरे कैपिटल को लेकर के जाएं और मेरा एक गुलाम मैसरा है वो भी आपके साथ साथ जाए, ठीक है, तो मैसरा गुलाम को भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया और मैसरा को खास हिदायत दी कि तुमने जो है ना वो इनकी इनका बहुत ख्याल रखना है, इनको कोई तकलीफ नहीं हो, तुमने इनकी खिदमत करनी है, ये कोई स्पेशल चीज है, ठीक है। अच्छा, खदीजतुल कुबरा जदान के बारे में ये भी पढ़ा कि ये अपने कजन वरका बिन नौफल से पहले भी ये बात सुन चुकी थी कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, ये ऐन मुमकिन है कि ये वही नबी है अल्लाह के जिनका के आसमानी किताबों के अंदर जिक्र मौजूद है। ठीक है, वर्का बिन नौफिल किताबों
के बहुत बड़े
आलिम थे और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान रखने वाले थे। ठीक है, और शिर्क नहीं करते थे, तो उसका मतलब ये कि वो जमाने के मुसलमान ही थे। ठीक है,
तो
तो
उन्होंने बता दिया
क्या था,
जी
तो फिर इस तरह
करंट की वजह से आप चार्जिंग में लगा दें। मैं थोड़ा जोर से बोलूँ तो इनको अंदाजा था कि समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मैसरा को इन्होंने खिदमत के लिए भी भेजा और ये भी देखने के लिए कि हाँ भाई जरा चेक वेक करके बताए भी कि वो वाकई क्या ये अल्लाह के नबी है। तो मैसरा इनके साथ जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ फिर सफर पर गए हदीयतुल कुबरा के माल को लेकर के। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हो चुकी थी? तकरीबन 25 साल हो चुकी थी। तो पहला सफर 12 साल की उम्र में हुआ था, बुसरा ही पहुंचे, और दूसरा सफर 25 साल की उम्र में हुआ और बुसरा ही पहुंचे। तो बुसरा में फिर ना नबी अलैहिस्सलाम जब रुके अपने पूरे काफले के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए वहां पर एक और ईसाई राहिब आया, उसका नाम था नस्तूरा। नस्तूरा पहले कौन आया था? बुहीरा। अब कौन आया मिलने के लिए? नस्तूरा। हो सकता है बुहीरा का इंतकाल हो गया हो, जमीन अच्छा गुजर गया। ठीक है, तो नस्तूरा आया, उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि आप जो है ना वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो वो तो ना देख करके अजीब सी उसकी हालत हो गई, वो बढ़ा गोया कि नबी अलैहिस्सलाम, लोग समझे कि गोया के अटैक करने के लिए आ रहा है। तो लोग ना एकदम से फ्रेश आ जाओ, ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मैं कोई हमला करने नहीं आ रहा, बल्कि वो डर करके ना अपने अपने पीछे जा करके जो उसकी खुटिया थी, छोटा सा घर होता था जिसमें राहिब लोग रहा करते थे, बस इबादत किया करते थे, उसमें जाकर के छुप गया। और वहां से उसने खिड़की खोल करके ना बोला कि भाई मैं कोई अटैक वटैक करने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इस दरख्त के नीचे जो है ना वो सिर्फ अल्लाह का नबी ही बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है ना, ईसा बिन मरियम मसीह, ये लफ्ज आया जो कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस दरख्त के नीचे बैठे थे और उनके बाद इस दरख्त के नीचे और कोई भी नहीं बैठा। अब जो बैठा है ये अल्लाह का नबी है। ठीक है, और उसने और भी चीजें देखी कि भाई आपसे हम जा रहे हैं तो बादल साया कर रहे हैं वगैरह, इस तरह की चीजें भी देखी। तो इस तरीके से फिर नस्तूरा का जो वाकया पेश आया, फिर नबी अलैहिस्सलाम, अच्छा उसने ये नहीं कहा कि वापस ले जाओ वापस, अब तो आप सदन बड़े हो चुके थे ना, 12 साल के बच्चे तो थे नहीं। ठीक है, तो वो सब बातें हुई कि वापस चले जाओ वापस चले जाओ, बस नबी अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी, फिर आगे बढ़े और मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के चीजों को सेल आउट करना शुरू किया जो करने के लिए आए थे। तो वहां पर जो है ना एक और वाकया पेश आया कि कोई आदमी आकर के नबी अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू हो गया। जैसे कहते हैं ना भाई माल आप जब ये कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो है वो खामखा की एक रंगला झगड़ना शुरू कर देते हैं। उसने झगड़ना शुरू कर दिया, आप सुन कहा नहीं मैं ऐसे कह रहा हूं, तो उसने कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं ऐसे, यानी ये एक बहस शुरू हो गई ना। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अच्छा तुम अगर सच्चे हो ना तो तुम कसम खाओ लात और उज्जा की। ठीक है, लात और उज्जा मशहूर बुजुर्ग बुत थे कुरैश के, तुम कसम खाओ लात और उज्जा की। नबी अलैहिस्सलाम कहा मैं उनकी कसम नहीं खाता हूं, बल्कि अगर कभी मेरा उनके करीब से गुजारा भी होता है ना तो मैं रास्ता तब्दील कर लेता हूं, मैं तो इनको पसंद ही नहीं करता ना। अच्छा, वो शख्स जो था वो या तो फेक कर रहा था, ये जो झगड़ा कर रहा था ना ये असल में झगड़ा नहीं कर रहा था, वो असल में नबी अलैहिस्सलाम को वो भी पहचान चुका था, शायद वो भी कोई आलिम दीन था। ठीक है, वो भी पहचान चुका था, वो और आप ससरम को टेस्ट करने के लिए सारे काम कर रहा था। तो जब आप ससरम इस तरह कहा ना कि मैं तो नहीं कसम खाता इनकी, तो उसने फिर नस्तूरा को जाकर के कहा कि ये वही है जिनका जिक्र हमारी किताबों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के वाकयात ये मैसरा गुलाम ने देखे। फिर इसने और भी चीजें देखी कि दरख्त जो है वो भी झुक जाते हैं अपने टहनियों से जो है वो आप ससम के ऊपर साया कर देते हैं, और बादल जो है वो आप ससम के साथ चल रहा होता है वगैरह वगैरह, सारी चीजें देखी। तो इसके बाद फिर इन लोगों का वापसी का सफर शुरू हुआ। तो उसके अंदर एक और वाकया पेश आया कि इनके काफले के अंदर दो ऊंट थे, वो बीमार पड़ गए
और मैसरा चूंकि गुलाम था तो वो उन ऊंटों की खिदमत कर रहा था, ख्याल रख रहा था कि भाई, और वो ऊंट जो है वो पीछे रह गए थे, तो वो पीछे देख रह गया उन ऊंटों की वजह से। उसको फिक्र हुई कि यार काफला तो आगे चला जाएगा, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम इनके साथ रहना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो ना भागा भागा जो है वो काफले के आगे आया जहां नबी अलैहिस्सलाम थे, और आप सबको बताया कि भाई ये दो ऊंट हैं, ये बहुत स्लो चल रहे हैं, बीमार हो गए। तो आप ना उसके साथ वापस पीछे आए और आपने पढ़ करके कुछ उन ऊँटों के ऊपर भी दम किया और हाथ वाथ फेरा, वो ऊँट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए और तेजी से चलते हुए वो आगे पहुंच गए, और बड़ी खुशी से जैसे आवाजें निकालते हैं ऊँट खुश होकर के, तो उस तरह से उन्होंने आवाजें भी निकाली। तो ये एक और वाकया भी मैसरा ने देखा। अब ये जो है ना वापस पहुंचे मक्का मुकरमा, तो मक्का मुकरमा पहुंचते हुए भी जब ये दाखिल हो रहे थे ना, तो मैसरा ने आगे जा करके हदीयतुल कुबरा रहता उनको खबर कर दी कि हम लोग वापस आ चुके हैं और वो भी आ रहे हैं। तो खदीजा रतान ने बकायदा अपने घर से जो है वो देखा कि नाप सलम आ रहे हैं, तो किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसा सीन था कि जिसके लिए उन्होंने और औरतों को भी जमा किया हुआ था कि तुम भी देखो कि आप सलम आ रहे हैं और आपके ऊपर बादलों का साया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सलम वापस आए, फिर आप सलम की इनके साथ मीटिंग हुई, तो सारा कारगुजारी बताई, और ये भी जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी पेश किया। तो वो जो प्रॉफिट हुआ था इस साल इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पिछले किसी साल के अंदर इनका इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब वाकयात हुए। फिर मैसरा ने ये सारे वाकयात जो उन्होंने देखे थे वो भी हजरत हजरत को बताए, ठीक है जी। हाँ ये भी हमने पढ़ा था, अगरचे कि इस किताब के अंदर या इन किताबों में आप पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं जिक्र था, लेकिन पहले कभी पढ़ा था जो आप कह रहे हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक्स्ट्रा काम ये किया कि लोग तो आमतौर पर माल लेके जाते थे बेच करके, बस प्रॉफिट लेके वापस आ जाते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये किया कि वहां से भी माल खरीद दिया, यानी उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वहां से भी माल खरीद लिया और उसको ला करके मक्का मुकरमा में बेचा। अब जाहिर है ये तो फिर डबल प्रॉफिट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक एडिशनल आपसे असलम को अल्लाह ताला ने ये बसीरत और अकलमंदी अता फरमाई थी। बहरहाल ये इन बड़ी बड़ी किताबों में तो ये चीज नहीं मिली थी हमें। तो खदीजतुल कुबरा अतान जो है वो पहले ही आपसे असलम की शराफत से अच्छी तरीके से वाकिफ थी, और दिल में एक तमन्ना तो थी कि मुझे ये सआदत मिल जाए, ठीक है। ये कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह के आखिरी नबी के घरवाली बन जाए, ठीक है। तो इन्होंने ना फिर बाकायदा शादी का पैगाम भेजा नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, यानी प्रोपोजल जो है वो इनकी तरफ से गया। और बनती भी है बात कि भाई ये कोई नौजवान लड़की कोई थोड़ी थी, ये तो इस वक्त इनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 25 आपसे सम की थी, और ये 15 साल पहले पैदा हुई थी, 40 ईयर्स, 40 साल की हो चुकी थी, और दो शादियां इनकी पहले होके खत्म हो चुकी थी इंतकाल की वजह से। तो शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप वुमन बाय दिस टाइम ना। तो इन्होंने फिर पैगाम भेजा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया। चचा ने कहा भाई ये तो यानी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि खदीजा जो है वो तुम्हें पैगाम भेज रही है, कितने लोग जो है वो खदीजा से शादी करना चाहते हैं वो सबको मना कर देती हैं, ठीक है, तो तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए इस पैगाम को, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है वो शादी की तफसीलात इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके ऊपर। किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो ऑनलाइन में से या ऑन साइट में से जी,
ये जो सारे इवेंट्स थे ये आसलेशन की बहस से पहले की, तो
जाहिर है
उन्होंने जो पर्ची फूका था वो तो फिर
पढ़ के भूखा था, तो कोई कलमात सीखे होंगे किसी से,
वो भी सही सामते
ईसा अलैहि सलाम के ना भी हों लेकिन ईसा अलैहि सलाम से तो नहीं सीखे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के कलमात से तो ये लोग वाकिफ होते थे ना, चीजें जानते थे, ठीक है। तो आप सल्लम की अपनी जुबानी अरबी थी ना, ये कोई थोड़ी एक अरबी किसी और से सीख करके अरबी के कलमात कहीं से सीख लिया हमारी तरह, ऐसा तो नहीं। तो अब अल्लाह ताला को जानते थे अच्छी तरीके से, अल्लाह ताला के बारे में वाकिफ थे, शिर्क नहीं करते थे, ठीक है। तो शिर्क नहीं करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा शिर्क का मतलब क्या होता है? और शिर्क नहीं करने का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना वो शिर्क नहीं करना हुआ, और शिर्क करना अल्लाह ताला को
अल्लाह के साथ भी सब
वो बताना चाह रहे थे पहले। ठीक
अल्लाह के साथ सुबह
शरीक ठहराना। अच्छा, आप
अल्लाह के साथ किसी पर बात कर सकते
इबादत के लायक किसी को और को समझना इबादत के लायक, तो ये शरीक, ये शिर्क होता है। और आप बता रहे था, आप बताए।
किसी को कादर नहीं समझना, कादर से बंदा उसे बोलना जो भी कुछ हो रहा है या हो सकता है आगे जाके उसे बंदा की वजह से ही हो सकता है और किसी की वजह से नहीं।
सही। दूसरे राहाब का नाम रिपीट कर दे। नस्तूरा, नस्तूरा दूसरे राहिब का नाम था। अच्छा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। डिड नस्तूरा बिकम अ मुस्लिम लेटर? नहीं, ये उलमा ने लिखा है कि कोई ऐसी हमें दलील, कोई हदीस नहीं मिलती कि जिसमें नस्तूरा का सहाबी होना प्रूव होता हो। ठीक है, तो बस अच्छा गुमान रख कर कह सकते हैं आप ही वो मुसलमान था और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया होगा। आप सल्लम के हाथ पे मुसलमान होना ये कहीं किताब में नहीं मिलता। फाइल हकीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को समझना क्या। अच्छा, तो शिर्क जो है ना, वो ये सारी चीजें जो कि आपने बताया, ठीक है, बेशक ये सब कुछ शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को माबूद ठहरा देना वगैरह, लेकिन
बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और की कंडीशनल ओबीडियंस करना है।
कंडीशनल ओबीडियंस करना। देखें, ठीक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक है ना। देखें, शिर्क का मतलब ये होता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो जवाब पूछ रहा अल्लाह की सिफात में किसी गैर अल्लाह को शरीक करना ये शिर्क है। ठीक है, बिल्कुल सही, किसी को गलत नहीं कह सकते। जी जो दिल में अल्लाह ताला को मकाम देना चाहिए वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को देना। ठीक है, तो ये सब हैं, लेकिन ऑपोजिट ऑफ यकसुई, डिफोकस्ड। अच्छा, अगर आप वही हैं जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई थी, तो फिर हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है कि डी फोकस शिर्क जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होना और तौहीद जो है वो फोकस्ड होना, ये बात भी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हम ये बात नहीं करना चाह रहे थे, इनके सवाल के जवाब में बात हुई है ना, ये आपने कहा ना कि वो कलमात उनको कहाँ से आए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम शिर्क नहीं करते थे। अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक ना करना, मतलब शरीक लिखते हैं कि अल्लाह जैसी उम्मीद और उसके जैसा खौफ किसी से ना होना। बिल्कुल सही लिखते हैं, ऑफ कोर्स हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही लिखते हैं। लेकिन एक और भी तरीका शिर्क को समझने का, जो कि जरा सा नाउज़ बिल्ला अल्फाज में थोड़ा सा लगे किसी को, अच्छा ये बेअदबी वगैरह अल्फाज का, बेअदबी पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती बेअदबी इसमें क्या है, लेकिन लोगों को लगता है बेअदबी। भाई, शिर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाकिस समझना। क्या समझना? अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाकिस समझना। नाकिस का मतलब पता है? ठीक है,
स्मॉल
सॉरी, डिफेक्टेड नहीं, डिफेक्टेड के अलावा कोई और नहीं। जी, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, राइट, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, इनकेपेबल, ये समझते हैं? इनकेपेबल का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अल्लाह ताला इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन, ही नीड्स पार्टनर्स, ही नीड्स हेल्पर्स। ठीक है, ये होता है शर्क। ठीक है, तो अब ये जो 360 हेल्पर्स उन्होंने काबे में रखे हुए थे, वो क्या थे, वो उनके लिहाज से हेल्पर्स थे ना अल्लाह ताला के, ठीक है ना। और कुछ जो है वो ताइफ में रखे हुए थे, कुछ जो है वो यमन में रखे हुए थे, कुछ जो है वो कहीं पे रखे हुए थे, कुछ जो है वो शाम में रखे हुए थे, कुछ जो है वो बहरेन में रखे हुए थे। ये सब क्या थे इनके लिहाज से? भाई अल्लाह ताला तो पूरा काम खुद नहीं कर सकता ना, तो अल्लाह ताला को भी जरा मदद शदत की जरूरत होती है ना, तो ये मददगार है अल्लाह ताला। अब वो मददगार अपनी तरफ से बनाए हुए थे उन्होंने सारे के सारे, जाहिर है अल्लाह ताला ने तो उनको नहीं बताया था कि मददगार है, ठीक है। तो अगर कोई अल्लाह ताला को ऐसा समझता हो, ये हमारी असल में ये बात क्यों करी जा रही है, हमारी इसलाह के लिए की जा रही है, ठीक है, ये हम अपनी इसलाह के लिए कर रहे हैं ना, कि अगर हम भी ये समझते हैं कि अल्लाह ताला सब काम नहीं कर सकता, बल्कि वी नीड टू हेल्प अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह केपेबल नहीं है खुदा ना खास्ता सारा काम करने के, बल्कि अल्लाह ताला को असिस्टेंस की और पार्टनर्स की जरूरत है, तो भाई एसेंशियली तो हम भी शिरकी कर रहे हैं ना। नहीं तो बुतों के सामने सजदा, वो मैंने तो कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया, मेरे तो बाप दादा ने कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया, तो इस वजह से हम कैसे मुशरिक हो सकते हैं? तो ये तो फिर बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये वाली हरकत तो हम सब कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें इससे तौबा करनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला को कामिल और हर चीज का कादिर सही मानों में समझना चाहिए, तब तौहीद कहलाएगी, वरना ये शिरकी है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुवाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए। मुवाहिद कहते हैं जो शिरक ना करता, ठीक है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह उन्होंने जवाब लिख भी दिया था इनकम्प्लीट, ठीक है। एग्जैक्टली की वजह भी यही बनती है, आप समझते हैं एक जगह से मेरा सारा काम नहीं बनेगा। हाँ